सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद और ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज और ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज और ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज और ग्लोरियस टू श्री गुरु एन गौरांग। हरे कृष्णा। तो आप लोग गीता ले सकते हैं, यहाँ गीता रखी है, जो दूर बैठे हैं वो आगे आए और गीता भी लें। गीता हिंदी में है, जो हिंदी पढ़ सकते हैं तो गीता ले सकते हैं। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते सुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 4, पृष्ठ संख्या 364। खोल लिया सबने? जितनी किताबें रखी हैं आप लोग बैठे हैं, क्यों आप क्यों नहीं इस किताब को लेते, क्यों नहीं खोलते? खोलिए सब लोग। पेज नंबर बताया मैंने, कितना बताया?
364।
अभी और किताब रखी और भी ले लो, किताब दे सकते हैं किताब। तीन सौ चौसठ अभी एक किताब और रखी है, ले सकते हैं आप। देखिए सबने खोल लिया, 364 पेज नंबर मिल गया, मिल गया आपको? किसको नहीं मिला? मिल गया आपको? आपको मेरे पीछे बोलिए। मन से यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। बोलिए और कोई माता जी बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। मन्यसे तुम सोचते हो यदि तत् वह शक्यं समर्थ मया मेरे द्वारा द्रष्टुं देखे जाने के लिए इति इस प्रकार प्रभो हे स्वामी योग ईश्वर हे योगेश्वर ततः तब मैं मुझे त्वं आप दर्शय दिखलाइए आत्मानं अपने स्वरूप को अव्ययम् शाश्वत। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे प्रभु हे योगेश्वर यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज सब लोग निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए। मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सागनललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। बच्चे को लेके एक व्यक्ति चले जाए बाहर, बच्चा अगर बाधा डाल रहा है तो एक व्यक्ति बच्चे को लेके बाहर चले जाएंगे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, नहीं भगवान नहीं कह रहे हैं, क्षमा करिए, कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, मन से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभु, कि हे प्रभु यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जा सकता है, अगर आप मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, ये भी मैं नहीं जानता है मेरी कितनी क्षमता है, मैं कितना देख सकता हूँ, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मेरी क्षमता है देखने की, योगेश्वर तत्व में त्वम दर्शी आत्मानम अद्यम, तो हे योगेश्वर आप मुझको अपना अविनाशी स्वरूप दिखलाइए, है ना, अव्यम अविनाशी शाश्वत विश्व रूप दिखलाइए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है। तो पहली बात प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को कोई नहीं देख सकता। अब एक प्रश्न उठता है कि विश्व रूप के लिए तो यहाँ बात हो रही है कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान का विश्व रूप नहीं देखा जा सकता, ना सुना जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण का ये जो रूप है इसको तो सब लोग देख रहे हैं। कृष्ण का ये जो रूप है इसको तो सब लोग देख रहे हैं, और अर्जुन के रथ में कृष्ण सारथी बने हैं, रथ चला रहे हैं, तो सब लोग देख रहे हैं, तो फिर इसको कैसे समझें? विश्व रूप के बारे में तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं विश्व रूप को, है? लेकिन फिर कृष्ण, क्या कृष्ण का ये जो रूप है क्या ये वैसा नहीं है, उतना ही दिव्य नहीं है क्या? कृष्ण का रूप क्या भौतिक है? क्या उत्तर है? कृष्ण का रूप तो भौतिक नहीं है। तो कृष्ण का रूप जो है सब लोग देख रहे हैं, जो भक्त हैं वो तो देख रहे हैं, जो भक्त नहीं है वो भी देख रहे हैं, दुर्योधन तो भक्त नहीं है वो भी देखता है, हैं? और निंदा भी करता है कृष्ण की, है ना। शिशुपाल ये भी कृष्ण को देखता था, निंदा भी करता था, जरासंध भी देखता था, हैं? कृष्ण की निंदा करता था, तो इसको फिर कैसे समझें? कृष्ण के विश्व रूप के बारे में अगर कहा गया कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है और ना अनुभव किया जा सकता है, तो फिर कृष्ण का रूप क्या भौतिक है? क्योंकि कृष्ण ने अभी अपने रूप को प्रकट किया है इस भौतिक जगत में। कृष्ण ने अपने को इस भौतिक जगत में प्रकट किया है, हैं? और ये जो रहस्य है ये कृष्ण ने चौथे अध्याय में बताया। तो कृष्ण का रूप तो दिव्य है, और कृष्ण का रूप उस विश्व रूप का भी कारण है। गोविंद नमादि पुरुषम, जितने भी रूप हैं भगवान के उनमें से आदि रूप आदि पुरुष कौन है? गोविंदम। सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो वो गोविंद जो है अनादि हैं, यानी उनका कोई कारण नहीं है, लेकिन वे आदि हैं, सबके कारण हैं। उनका कोई आदि नहीं है और सबके आदि वो हैं गोविंद। तो जब अपने को प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में तो कोई भी उनको देख सकता है, जो नहीं पहचान पाते हैं वे भी देख पाते हैं कृष्ण को, जो पहचान पाते हैं वो तो देखते ही हैं। जो कृष्ण की शरण लेते हैं तो वे तो देखते ही हैं कृष्ण को, जो कृष्ण की शरण नहीं लेते वे भी देखते हैं कृष्ण को, और कृष्ण को भौतिक, कृष्ण का शरीर भौतिक समझते हैं, कृष्ण का शरीर अपनी तरह समझते हैं। कंस भी कृष्ण को देखता था और सोचता भी था कि कृष्ण की हत्या मैं कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो ये समझना है, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। तो शुरू से ही अगर दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे कोई व्यक्ति, तो दिव्य प्रेमा भक्ति कैसे शुरू होती है? शास्त्र साधु आचार्य के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति शुरू होती है। तो अगर शुरू से हो तो फिर कृष्ण का दर्शन हो सकता है। तो कृष्ण अपने को प्रकट करते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन मुखे ही जय वादो स्वयं स्प्रत्यधा। कृष्ण का नाम आदि इंद्रियों से नहीं ग्रहण होता है, लेकिन जिह्वा से प्रारंभ करके अगर हम सेवा करते हैं तो स्वयं एक स्फुरति, तो स्वयं ही स्फुरित होता है। क्या? कृष्ण का नाम रूप गुण लीला ये स्वयं स्फुरित होते हैं, लेकिन सेवा के हम उन्मुख हो जाएं, और प्रारंभ होती है सेवा कहाँ से? जिह्वा आदौ, जिह्वा से प्रारंभ होती है सेवा। जिह्वा से कैसे प्रारंभ होती है? जिह्वा के दो कार्य हैं, एक कार्य है खाना स्वाद लेना, दूसरा कार्य है बोलना। तो अगर कोई व्यक्ति जिह्वा से ये दो कार्य करे सेवा के, तो जिह्वा से सेवा का कार्य एक तो है खाना कृष्ण को अर्पित, कृष्ण को जब भोग लग जाए तो वही खाना और कुछ नहीं खाना, जिह्वा की सेवा एक तो ये है। और दूसरी सेवा कृष्ण के विषय में बातें करना। आप कृष्ण के विषय में आप बातें नहीं कर सकते, आपको इतना पता ही नहीं कि कृष्ण के विषय में क्या बातें करें, आप जानते भी नहीं। तो हरे कृष्ण मंत्र कहीं आप कीर्तन करिए और बेकार की बातें ना करिए। तो जिह्वा की दोनों प्रकार की सेवा अगर कोई व्यक्ति लग जाए तो इससे स्वयं ही विस्फुरति, तो स्वयं ही स्फुरित होता है। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला स्वयं स्फुरित होते हैं। तो ये प्रभुपाद देखते हैं, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। तो भगवान का साक्षात्कार कई प्रकार से भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान जो है अपना साक्षात्कार अर्ष विग्रह में भी दे सकते हैं, अर्ष विग्रह के रूप में भगवान आपसे बातें कर सकते हैं, एक ये भी साक्षात्कार है। अर्ष विग्रह के रूप में भगवान आपसे ऐसे बातें कर सकते हैं जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, उस तरह से बातें कर सकते हैं, तो ये भी साक्षात्कार है। जैसे गौरीदास पंडित कालना ग्राम में रहते थे, तो गौर निताई ये जो यहाँ गौर निताई के सेवक रहे, ये साक्षात गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके घर गए। तो पहली बार आए गौर निताई उनके घर में, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, कितना खुशी हो रही है कि साक्षात गौरांग देव और नित्यानंद प्रभु जो है उनके घर में आए हैं। तो कीर्तन किया और जो है नृत्य किया उनके घर में, और अब बोले अब तो हम जा रहे हैं। गोरीदास पंडित बोले आप नहीं जाना, आप अगर आप गए तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे, मेरे घर से अब आप दोनों नहीं जाइए। गोरीदास पंडित बोले अब तो भगवान फंस गए हैं, ये तो जो है अड़ गया, अगर हम जाएंगे तो अपने प्राण छोड़ देगा। तो भगवान बोले नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, मेरी मूर्ति है, मेरे अर्चा विग्रह हैं, तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम उनकी पूजा करो और सेवा करो। बोले ना ना ना, अर्चा विग्रह से काम नहीं चलेगा, आपको ही आप ही रहो हमारे घर में, अर्चा विग्रह से काम नहीं चलेगा। क्योंकि उनका विचार था कि अर्चा विग्रह थोड़ी बातें करेंगे, अर्चा विग्रह थोड़ी बातें करेंगे, है ना। जैसे आप साक्षात कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, बातचीत करते हैं, हैं अर्चा विग्रह थोड़ी बात करते हैं। तो बोले नहीं नहीं अर्चा विग्रह है से काम नहीं चलेगा, आप दोनों मेरे घर में रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि ठीक है, फिर भी अर्चा विग्रह तो बनवा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से अपना और नित्यानंद प्रभु का अर्चा विग्रह बनाया, नीम की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से अपने ही बराबर आकार की मूर्ति बनाई और नित्यानंद प्रभु के आकार की मूर्ति बनाई, बराबर आकार की मूर्तियां बनाई। अब चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले कि अब देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो हम दोनों जोड़ियों को भोजन कराओ, भोजन कराओ दोनों जोड़ियों को। तो दोनों बैठ गए, दोनों जोड़ी बैठ गई, चैतन्य नित्यानंद की एक जोड़ी बैठी है, उसी जोड़ी वो भी बैठे हैं, जो मूर्तियां बनाई थी वो भी बैठे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बैठ गई मूर्ति भी बैठ गई है, वो तो खड़े मूर्ति तो खड़ी है ना, गौरनिताई की खड़ी है ना, तो बैठ गई। अच्छा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अब मन में फिर भी कुछ शक बना हुआ है, तो भोजन खिलाया, थाली लगाई है, चार प्लेट लगाई, यहाँ गौरनिताई बैठे हैं, यहाँ मूर्तियों को, तो चारों खा रहे हैं कोई अंतर नहीं चारों खा रहे हैं कोई अंतर नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी कुछ शक बना हुआ है। तो भोजन के बाद जो है उन्होंने गौरनिताई को जो है चंदन का लेप किया, तो चंदन के लेप के बहाने भी छू करके देखा कि कोई अंतर है क्या तो कोई अंतर नहीं। माला पहनाई, माला के बहाने भी छू के देखा, कोई अंतर नहीं। अब भगवान बोले कि अब देखो एक जोड़ी को अपने पास रख लो, एक जोड़ी को जाने दो, दो जोड़ी है ना तुम्हारे घर में, एक जोड़ी कोई भी एक जोड़ी अपने पास रख लो और एक जोड़ी को जाने दो तो जो बोल रहे थे बोले आप रहो ये जान, तो वो उठ के जाने लगे, उठ के जब जाने लगे तो उनको फिर शक हुआ, अरे भगवान जो है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो आप रहो अंदर, ये जाए, तो ये जाने लगे, वो रुक गए। फिर उनको लगा रहे कुछ जो है फिर से कर दिया कुछ गड़बड़, नहीं 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 आप अंदर रहो, ये जाए तो वो जाए, तो कोई अंतर ही नहीं। फिर हार करके उन्होंने एक जोड़ी को अपने पास रख लिया। तो ये गौरनिताई जो है कालना में अभी भी हैं, अर्चा विग्रह गौरदास पंडित के, तो वे जो है गौरदास पंडित के साथ में मतलब सब बातें करते थे, सब बातें करते थे है? तो एक बार जो है गौरदास पंडित जो है थाली लगाई भोग की थाली लगाई, अब गौण दही नहीं खा रहे हैं। तो गुरुदास पंडित जो है बड़े गुस्सा हुए, हैं अच्छा तो इतने नखरे दिखा रहे हो कि खाओगे नहीं, आज नहीं खा रहे हो हैं, तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी नहीं खाऊंगा। तो वो भी जो है गुस्सा होकर के बैठ गए, नहीं खाऊंगा, तुम नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वो तो डायरेक्ट खिलाते थे ना ऐसे, भाई खाओ। तो फिर गौरांग महाप्रभु बोले कि पंडित तुमसे कितने बार हमने कहा कि इतना आइटम मत बनाया करो, अभी तुम जो है इतनी ज़्यादा उम्र हो गई तुम्हारी, तो इतने सब आइटम जो है तुम जंगल में जा करके और तोड़ के लाते हो सब्जियाँ, ये सब इतनी इतनी सब्जियाँ, इतना परिश्रम तुम्हारा जो है मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए हम नहीं खा रहे हैं। तो गुरुदास पंडित बोले अच्छा ठीक है, आगे से मैं केवल दो ही आइटम बनाऊंगा, या अभी तो खा लो। तो खाया गौर दाई ने खाया, है ना। फिर हृदय उनके शिष्य थे, हाँ उनका नाम था चैतन्य दास। तो चैतन्य दास को जो है उन्होंने मतलब कहा गुरुदास पंडित ने कि देखो कुछ समय के लिए मैं जा रहा हूँ कालना से बाहर, और गौर पूर्णिमा का जो त्यौहार आने वाला है उसकी तैयारी सब मैं करूँगा, तुम कुछ नहीं करना, मैं ही सब तैयारी करूँगा। तो चैतन्य दास अपने गुरु की आज्ञा मान ली। अब उनको आने में देर हो गई, चैतन्य दास को चिंता हुई कि देखो कल तो गौर पूर्णिमा है और गुरु महाराज आए नहीं, तो फिर कल जो है गौर पूर्णिमा का सामान फिर मंगा लिया जाए, हैं तो तैयारी तो करनी है, तो मंगा लिया सामान। तब तक गुरुदास पंडित आ गए, डांटा कि तुमको हमने मना किया था कि तुम जो है कुछ तैयारी नहीं करना, मैं खुद ही करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप चूँकि नहीं आए थे तो मुझे चिंता हो गई, इसलिए मैंने तैयारी की। तो गुरुदास पंडित बोले अब ऐसा करो, ये सब सामान लेकर के तुम भी जाओ, निकल जाओ मेरे आश्रम से, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारे सामान की ज़रूरत है ना तुम्हारी ज़रूरत है, निकल जाओ। तो क्या करें बेचारे, निकल गए। तो गंगा के किनारे जो है उन्होंने अगले दिन गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया। तो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं तो खूब पब्लिक इकट्ठी हो गई, तो पब्लिक भी जो है खूब कीर्तन करने लगी, और फिर नृत्य किया तो नृत्य भी खूब, पब्लिक नाच रही है कीर्तन कर रहे हैं तो खूब कीर्तन हो रहा है। और वो चैतन्य दास का जो कीर्तन हो रहा था तो उसको जो है ये गौरदाई सुन रहे थे, कहाँ पर गुरुदास पंडित के घर में जो गौरदाई थे वो सुन रहे थे। तो जब उनके कानों में वो कीर्तन की आवाज़ पड़ी तो दौड़ करके गौरदास पंडित से के घर से कूद करके भाग गए गौरदाई, कहाँ चले गए कीर्तन में नाचने लगे, चैतन्य दास के कीर्तन में नाचने लगे। और गौरदास पंडित आए देखे अरे भाग गए, तो छड़ी लेकर के आए गौरदाई को दिखाने के लिए हैं कि कैसे मेरे घर से निकल के भागे हैं। तो छड़ी दिखा रहे हैं, गौरदाई जो है ने देखा कि अरे ये तो छड़ी लेकर के आ गया, तो डर के मारे चैतन्य दास के हृदय में घुस गए, उनके शिष्य के हृदय में घुस गए गौरदाई। तो फिर गौरदास पंडित ने देखा कि अरे ये मेरा शिष्य तो इतना बड़ा भक्त है कि भगवान मुझसे दूर भागते हैं और इसके शिष्य और इस शिष्य के हृदय में घुस गए, तो ये तो बहुत बड़ा भक्त है। तो उस अपने शिष्य को जो है अपने हृदय से लगा लिया है, चूँकि हृदय में गौरदाय घुस गए थे तो उन्होंने अपने शिष्य को नाम दे दिया हृदय चैतन्य है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता था कि भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में भी जो है अगर चाहें तो पूरा अपना जो है प्रकाश कर सकते हैं, पूरी तरह से बातचीत कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने कहा भी है कि मैं सोचो कि अर्च विग्रह जो है मतलब पत्थर की मूर्ति हैं, ये तो देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी सेवा की भावना है, अगर तुम्हारे अंदर सेवा की भावना देखेंगे तो ये जो है आपसे बातें करेंगे, आप बात कर सकते हैं उनसे। सनातन गोस्वामी भी बात करते थे, मदन मोहन जी से बात करते थे, मदन मोहन जी पहले परशुराम चौबे के घर में थे, मथुरा में परशुराम चौबे के घर में थे, तो उनके पुत्र के साथ खेला करते थे मदन मोहन। और वे जो है दोनों को अपना पुत्र मानते थे, उनका अपना भी पुत्र था और ये मदन मोहन जी दोनों को पुत्र मानते थे। तो वो जो चौबाइन थी तो मदन मोहन जी को अपना पुत्र मानती थी, तो सवेरे सवेरे जैसे बच्चे को भूख लगती है तो वो जो है मदन मोहन जी को भी जो है और अपने पुत्र को साथ साथ खिलाती थी भोजन, तो दाल चढ़ा देती थी और इस दातून करती थी, तो उसी दातून से दाल भी चलाती थी है? और तब जो है स्नान फिर करती थी, तब तक दाल तैयार हो जाती थी, तो जल्दी जल्दी अपने पुत्र को मदन मोहन जी को जो है भोग लगाती थी। तो सनातन गोस्वामी एक बार वहाँ पर आए भिक्षा मांगने के लिए, तो देखा कि अरे ये माता जी तो अशुद्ध अवस्था में ही जो है दाल चलाती हैं, दातून से ही जो है दाल चलाती हैं, जो तो मतलब अशुद्ध विधि है, ये शुद्ध विधि नहीं है भगवान का भोग लगाने की। तो उनका कि माता जी आप स्नान करने के बाद ही आप जो है दाल चढ़ाया करो और दाल चलाया करो, ये विधि नहीं है। तो चौबाइन बोले कि महाराज जैसा कहते हो वैसे ही करूँगी, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा है ये भूखा रहेगा तो इसलिए मैं जल्दी से इसको भोजन बनाऊँ। अब आपने कह दिया है तो मैं स्नान करने के बाद ही दाल चढ़ाऊँगी। अब स्नान करने पर जब दाल चढ़ाए माता जी तो फिर बहुत देर लगती थी दाल बनने में। तो मदन मोहन जी ने सपना दिया सनातन गोस्वामी को कि अरे आपने क्या बोल दिया उनको माता जी को, अब तो जो है मैं बहुत देर तक भूखा रहता हूँ, वो स्नान के बाद दाल चढ़ाती है फिर वो दाल बनने में बहुत देर लगती है। तो सनातन गोस्वामी आए और चौबाइन से बोले कि माता जी आप वैसे करो जैसे करती हो, है ना, ये आपकी इसी सेवा से प्रसन्न है, आप ऐसे ही करो। फिर बाद में जो है सनातन गोस्वामी रोज आते थे भिक्षा मांगने के बहाने, तो मदन मोहन जी का दर्शन भी करते थे। तो मदन मोहन जी जो है जिद करने लगे चौबाइन से कि मुझे तो इसी बाबा के पास जाना है, इसी बाबा के साथ जाऊंगा मैं। तो चौबाइन बड़ी दुखी हुई है कि इसका दिमाग इतना चंचल है कि एक घर में रहना नहीं चाहता है, अब वो बाबा हैं उनके साथ जाना चाहता है, और वो बाबा कहाँ इतनी सेवा करेंगे। तो फिर सनातन गोस्वामी से कहा कि महाराज ये जो है तुम्हारे साथ जाना चाहता है, अब मुझे तो बड़ा दुख होता है, तो इसका स्वभाव बड़ा चंचल है, इसका जो है मन लगता नहीं एक जगह। तो सनातन गोस्वामी ले आए अपने साथ, अब पेड़ के नीचे उनको जो है स्थापित कर दिया मदन मोहन जी को, है ना। अब चौबाइन तो कई बार भोग लगाती थी और क्या क्या कई कई आइटम बनाती थी मदन मोहन जी के लिए, अब यहाँ मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी के पास तो कुछ है नहीं, वो क्या भोग लगाएंगे, वो तो आटा मांग के लाते थे और आटा की जो है बाटी बनाते थे, आटा को गूंद करके जमुना जी के जल में, और वो टिक्कड़ जो है मोटे मोटे टिक्कड़ आग में सेक करके और उसी का भोग लगा देते, नमक भी नहीं, घी भी नहीं, मसाला भी नहीं, वही टिक्कड़ जो है आग में सेका उसी को भोग लगाते थे, उसी को खा देते। तो मदन मोहन जी बोले सनातन गोस्वामी से, सनातन ये इसमें थोड़ा नमक तो दे दिया करो, मेरे गले से नहीं उतरते हैं टिक्कड़ तुम्हारे। तो सनातन गोस्वामी बोले देख लो, इसलिए तो मैंने कहा था मेरे साथ मत चलो, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कहाँ तुम्हारी सेवा करूँगा। अब उस चौपाइन तो क्या क्या तुमको भोग लगाती थी है, अभी तुम नमक मांग रहे हो, फिर तुम घी मांगोगे, फिर मसाला मांगोगे, मैं कहाँ से रहूँगा। तो मतलब कहने का है कि भगवान अर्चा विग्रह के रूप में किसी को अगर मतलब प्रकट हो जाएं तो मतलब ऐसे बातें करते हैं, आमने सामने बातें करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब ये है, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। आगे प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। प्रत्येक जीव क्या है, भगवान का बहुत छोटा अंश है। आध्यात्मिक स्फुलिंग प्रभुपाद कह रहे हैं कितना छोटा अंश है भगवान भगवान का, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, इतना छोटा जीव है ना। तो भगवान को क्या देख सकता है, भगवान को कैसे जान सकता है ना। आगे भक्त रूप में अर्जुन को अपने चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है, वे जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करते हैं। तो ये है विशेष गीता का जो है, जो असली जो रहस्य है वो ये है, ये समझना। क्या समझना, कि मैं कितना अयोग्य हूं और कृष्ण कितने योग्य हैं, मुझ में और कृष्ण में कोई तुलना ही नहीं है। जैसे आग की चिंगारी में भी आग होती है, कितनी थोड़ी आग होती है, और अग्नि जो विशाल अग्नि होती है उसमें कितनी आग होती है, तो बहुत अंतर है। इसी प्रकार से जीव में और भगवान में बहुत अंतर है, कोई तुलना नहीं है ना। तो ये जो है गीता को समझने की ये विधि है कि मैं नहीं समझ सकता भगवान को, मेरी शक्ति नहीं समझने की, लेकिन कृष्ण अगर समझाएं तो समझा सकते हैं, उनकी असीमित शक्ति है। तो अपनी असीमित कृपा के द्वारा अगर वो मुझे समझाना चाहें अपने बारे में तो समझा भी सकते हैं। कृष्ण की असीमित शक्ति है, इसलिए कठिन से कठिन काम को भी कृष्ण सरल बना सकते हैं, असंभव को भी सरल बना सकते हैं। तो मैं नहीं जान सकता कृष्ण को, असंभव है मेरे लिए कृष्ण को जानना, लेकिन कृष्ण अगर चाहें तो मैं कृष्ण को जान सकता हूं और बहुत सरलता से जान सकता हूं है? तो ये जो है यहां पर ऊपर लिखते हैं, अर्जुन समझ चुके थे कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है, यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है ना। तो भगवान अनंत है, जीव जो है कभी भगवान को समझ नहीं सकता, लेकिन उनके पास अनंत शक्तियां भी हैं, इसलिए जीव को अगर वे समझाना चाहें अपनी शक्ति के द्वारा तो जीव समझ सकता है, तो उनके पास शक्ति है, उनके पास इतनी समझाने की शक्ति है कि जो मूर्ख से मूर्ख को भी जो है वे बड़ी से बड़ी बातें भी समझा सकते हैं, उनके पास समझाने की भी शक्ति है। भगवान के पास समझने की भी शक्ति है और समझाने की भी शक्ति है, जीव के अंदर न समझने की शक्ति है न समझाने की शक्ति है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचंत शक्ति है, यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, योगेश्वर, योग ईश्वर, योग के ईश्वर, योग का मतलब उपाय भी होता है, योग के कई अर्थ हैं, योग का एक अर्थ है उपाय भी होता है। तो योगेश्वर का मतलब क्या हुआ कि कृष्ण सब प्रकार के उपाय जानो जानने वालों के ईश्वर हैं, उनके पास इतने उपाय हैं प्रत्येक कार्य को करने के लिए, इतने उपाय हैं, हजारों उपाय हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कोई चीज जानना चाहते हैं कोई उपाय नहीं होता, कैसे जाने, कोई काम करना चाहते हैं कोई उपाय नहीं होता, कैसे काम करें। और कृष्ण के पास क्या है कि हजारों उपाय हैं, एक काम को करने के लिए हजारों उपाय हैं, प्रत्येक कार्य को करने के लिए हजारों उपाय हैं कृष्ण के पास, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, योगेश्वर है ना। योग का कई अर्थ हैं, एक अर्थ है उपाय है ना। तो कृष्ण जो है मतलब हजारों उपाय कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। आगे यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हैं। हाँ, कृष्ण अर्जुन जो है मांग रहे हैं कृष्ण से, क्या मांग रहे हैं? अकल्पनीय कृपा, आपकी अगर कृपा हो तो मैं आपको जान सकता हूं, आपको देख सकता हूं। अपनी शक्ति से मैं आपको ना देख सकता हूं ना आपको जान सकता हूं, लेकिन आपकी शक्ति से मैं आपको देख सकता हूं आपको जान सकता हूं। जैसे सूर्य, तो सूर्य को जो है आप किसी भी शक्ति से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूर्य आपको जब दिखाता है अपना दर्शन दे रहा है तो आप देख सकते हैं, तो बहुत आसान है। तो सूर्य जब आपके सामने आता है तो आप उसको देख सकते हैं, तो कितना सरल है सूर्य को देखना, कितना सरल है अगर सूर्य अपना दर्शन दे आपको। और सूर्य अगर अपना दर्शन ना दें तो आपके लिए सूर्य को देखना कोई उपाय नहीं, संभव नहीं। उसी प्रकार से कृष्ण हैं, अगर अपना दर्शन कराएं तो उनका दर्शन इतना आसान है कि इससे आसान कुछ है नहीं, और अपना दर्शन ना कर दें तो आपके पास कोई उपाय नहीं है कृष्ण का दर्शन करने का, है ना। फिर तो बस यही, अपने को धोखा देना चाहते हो तो किसी को भी मान लो भाई ये अवतार हैं, ये अवतार हैं, ऐसे लोग करते हैं। उनके पास तो शक्ति है नहीं कि कृष्ण का दर्शन कर सकें, तो कृष्ण के झूठे अवतार बना देते हैं किसी को भी, है ना। तो ये जो है धोखेबाजी चल रही है हर जगह है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे कृष्ण को आदेश नहीं देते। हाँ, कितना अच्छा है, अर्जुन जो है कृष्ण को आदेश नहीं दे रहे हैं। क्या अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप अपने को जैसा कहते हैं मैं नहीं मानता, आप दिखाओ, अगर कुछ दिखाओ तो मैं मानूंगा, ऐसा नहीं कहा। तो कृष्ण को जो है ऐसी कोई गरज नहीं है कि आप उनको भगवान माने। अगर आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं तो उनको कुछ भी उनको उनका कुछ भी नुकसान नहीं है कि उनका भगवान आप उनको भगवान नहीं मानते तो, है? तो नहीं मानते हो तो ना मानो, तो कृष्ण को कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई काम रुक जाएगा। आप अगर कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो उनका कुछ काम नहीं रुक जाएगा, है ना। जैसे कि प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? एक मजदूर है, वो कहता है मैं नहीं मानता भारत के प्रधानमंत्री को, अगर भारत का कोई प्रधानमंत्री हो तो मेरे सामने आए। तो भारत के प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है किसके सामने आए? तुम नहीं मानते तो ना मानो, उसका क्या नुकसान है? तो इसी प्रकार से कृष्ण के लिए जो है कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि भाई अपना दर्शन दें आपको कि भाई तुम मानो, देखो मैं भगवान हूँ, मानो मेरी शक्ति देखो तब मानो। तो भगवान ऐसे नहीं करते। कोई अगर भगवान को भगवान नहीं मानना चाहता है तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं, हैं? इससे उल्टे विचार आते हैं उसके पास, भगवान के विरुद्ध विचार आते हैं। अब वो कहता है मैं नहीं मानता भगवान को, अपने तर्क देता है। आगे रूपा लिखते हैं, हाँ, तो वे कृष्ण को आदेश नहीं दे रहे हैं, अर्जुन कृष्ण को आदेश नहीं दे रहे हैं, है? आगे, जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। तो कृष्ण ही अपने को प्रकट करेंगे, है ना। तो कृष्ण जो है हमारी इंद्रियों से ऊपर है, तो अगर वो हमारी इंद्रियों की अनुभूति में अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, और नहीं आना चाहे तो नहीं आ सकते। तो हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर कृष्ण के दर्शन करने हैं तो कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि मुझे दर्शन कराइए अपना, प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो ये कृष्ण जो है ऐसी कोई जड़ वस्तु थोड़ी है, जब चाहे तब देख लो, जब चाहो तो छू लो। जड़ वस्तु क्या है? जब चाहो तब इसको देख लो, छू लो और फेंक दो है? जब चाहो फेंक दो, जब चाहो उठा लो, जब चाहो तो इसको है? सफाई करो, जब चाहो तो इसको गंदा रखो है? ये तो भौतिक वस्तु है। ऐसे कृष्ण नहीं है, कृष्ण चेतन है, परम चेतन है। तो आप उन पर के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं कि आप जब चाहें तब कृष्ण को देख लें, ये नहीं हो सकता। आगे प्रभु लिखते हैं, अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है कि मैं इन आंखों से देखना चाहता हूं भगवान को है? भगवान हा? मेरी आंखों के सामने आओ तो मैं मानूंगा कि आप भगवान हैं, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। तो भगवान को क्या पड़ी है कि आपकी आंखों के सामने आए, है ना? तो भगवान तो जो है भक्ति का भाव देखते हैं तब किसी को दर्शन देते हैं या उसके निकट आते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो है हमें ये समझना है कि अर्जुन ने भगवान से कैसे प्रार्थना की कि यदि हे प्रभु आप मानते हैं कि मैं देख पाऊंगा आपके रूप को, तो योगेश्वर तत्व में तुम दर्शय आत्मानमभ्यम, इसलिए हे योगेश्वर तब आप मुझे अपना दर्शन कराइए। तो ये श्लोक था, है ना? अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आज के श्लोक पर हमने कुछ चर्चा की, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि कृष्ण को अर्जुन ने आदेश नहीं दिया, कृष्ण को अर्जुन ने आदेश नहीं दिया। क्या आदेश नहीं दिया, कैसा आदेश नहीं दिया, कौन बताएगा? कृष्ण ने अर्जुन को आदेश नहीं दिया, नहीं क्षमा कर, अर्जुन ने कृष्ण को आदेश नहीं दिया। कैसा आदेश नहीं दिया?
हैं? मुझे अपना स्वरूप दिखा।
हाँ, कि मुझे अपना विश्वरूप दिखलाइए, ऐसे आदेश नहीं दिया। जैसे कोई आदेश देता है ना कि भाई अपने को अगर आप कहते हो कि भारत के प्रधानमंत्री हो है, तो ये काम करके दिखाओ, इतना बड़ा काम करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने जो है कृष्ण से नहीं कहा, कृष्ण ने अपने विभूतियों का वर्णन किया था 10वें अध्याय में। तो अर्जुन ने ये नहीं कहा कि कृष्ण आप अपने को अगर ये सब कहते हो कि आपके अंदर ये सब शक्तियां हैं तो अपना स्वरूप दिखलाओ, तब मैं मानूंगा, ऐसी चुनौती से काम नहीं चलेगा। तो भगवान जो है चुनौती से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों के समर्पण से प्रसन्न होते हैं, जो समर्पण करता है और अर्जुन की तरह प्रार्थना करता है। अर्जुन ने क्या प्रार्थना की? प्रभु योगेश्वर, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो उन्होंने अर्जुन ने क्या कहा? योगेश्वर। तो योगेश्वर की चर्चा की थी हमने, क्या किस तरह से योगेश्वर है? हाँ, योगों की ईश्वर, योग का मतलब एक अर्थ है उपाय, उपायों की ईश्वर है। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो अगर आपने अनुभव नहीं लिया है, अपने से बड़े अनुभवी का अनुभव नहीं लिया है, तो आप उस काम में असफल हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण को जो है किसी से अनुभव लेने की जरूरत नहीं है, उनके पास सब प्रकार के अनुभव हैं और एक भी काम को वो जो है हजारों प्रकार से कर सकते हैं, बिना किसी की सहायता के कृष्ण कर सकते हैं, इसलिए योगेश्वर कहे जाते हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा, योगेश्वर, है ना, योगेश्वर ततो माँ ततो में तुम दर्शयात मानव अभियान, इसलिए है योगेश्वर आप मुझे अपने अविनाशी रूप दिखलाइए, अपना विश्व रूप दिखलाइए, ये प्रार्थना की। और प्रभु और शब्द का प्रयोग किया, प्रभु, प्रभु का मतलब मालिक। तो हमें जो है इसी प्रकार से कृष्ण को अपना मालिक बनाना चाहिए। तो कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तो ये जो भाव है ये अगर हमारे अंदर विकसित होगा तो हम गीता को समझ पाएंगे। तो गीता को समझने के लिए जो सबसे आवश्यकता है वो इसी बात की है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।